ओम शांति। हम आप सबके बीच में आमंत्रित करना चाहेंगे बिजी सो इजी के साक्षात्कार उदाहरण उमंग और ऊर्जा के अग्रदूत अध्यात्म जगत के नक्षत्र सर्वप्रिय ब्रह्मा कुमार ललित भाई जी को। तो सभी एक हाथ की ताली से भाई जी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करेंगे। आप 1993 से बाबा के ज्ञान में आए और मधुबन महायज्ञ में सन 2007 में आप बेहद की ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित हो गए। अभी वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी है, मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य भी हो, साथ ही देश विदेश में ब्रह्मा कुमारीज और उसकी सहयोगी संस्था के अकाउंट्स फाइनेंस और लीगल मैटर्स को आप मैनेज भी करते हो। इस प्रकार अब ब्रह्मा कुमारीज के लिए एक महत्वपूर्ण पिल्लर के समान हो। बहुत छोटी आयु से ही आप ईश्वरीय सेवाओं अर्थ नित नए आयाम रचते आ रहे हैं और आज भी यह सिलसिला जारी है। अहमदाबाद में ब्रह्मा कुमारीज का जो राजी खुशी सीनियर सिटीजन होम है उसके भी आप प्रबंधक हैं, रेडियो साबरमती के आप चीफ प्रमोटर हैं, आप दिव्य नगरी स्लम सेवा योजना और दिव्यांग सेवा योजना के भी वाइस चेयरमैन हैं, आपने नेचुरोपैथी और योगा में डिप्लोमा भी प्राप्त किया है और भाई जी सीए होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक कवि और गीतकार भी है। आपकी लिखी पुस्तक सदा स्वस्थ जीवन 12 भाषाओं में प्रकाशित हुई है और अन्य दो पुस्तकें सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और सुगंधित पुष्प भी आपकी लेखनी द्वारा ही रचित है। अनेक छोटी बहनें जिनको अकाउंट का नाम मात्र भी ज्ञान नहीं था उनको आपने अकाउंटेंट बना दिया। व्यक्तिगत पुरुषार्थ साइबर क्राइम और प्रबंधन संबंधित कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं एवं जानकारियां आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा भी ब्राह्मण परिवार तक पहुंचाते रहते हैं। आप ओजस्वी वाणी के धनी होने के साथ साथ मृदुभाषी भी है। निसंकोच रूप से कोई भी आपके पास किसी सहयोग के लिए पहुंच सकता है जिसके लिए आप सदा तत्पर रहते हैं। आपके लिए सिर्फ यही कहना चाहेंगे अनोखा व्यक्तित्व आपका निराली है पहचान। सेवा में सदा अथक बढ़ाते यज्ञ किसान, सेवा में सदा अथक बढ़ाते यज्ञ किसान, ऐसी ऊंची हस्ती का शब्द कैसे करे गुणगान, शब्द करे कैसे गुणगान। तो ऐसी नम्र विभूति से निवेदन करेंगे कि अपने अनुभव युक्त वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें कि सब कुछ प्रभु के हवाले करके हम निश्चिंत अवस्था कैसे बनाए। आदरणीय भ्राता श्री ललित भाई जी, ओम शांति।
ओम शांति। वर्तमान समय हम आत्माओं का ये श्रेष्ठ सौभाग्य है जो हम सब कुछ प्रभु के हवाले करके निश्चिंत रह सकते हैं। यह केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं है पर यह जीवन की एक प्रैक्टिकल अवस्था है। जैसे हमारा कोई मित्र है जो बहुत ही प्रभावशाली है, जिस हर कार्य गवर्नमेंट का है या और किसी एजेंसी का है वो सब बहुत अच्छी तरह करवा सकता है, उसकी बहुत पहचान है, बहुत पैसे वाला है, बहुत शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, होशियार है, और हमारे घर पे जैसे कोई बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और हम उसको सौंप देते हैं कि भाई इसका सारा मैनेजमेंट आपको देखना है, तो हम कैसे निश्चिंत हो जाते हैं भाई वो हर प्रकार से कैपेबल है, सब कुछ वो कर लेगा, हमको उसकी चिंता नहीं होती है एक बार सौंप दिया तो। ऐसे ही जीवन की हर बात को अगर हम प्रभु के हवाले करने के अभ्यासी हो जाते हैं तो हम इस वर्तमान संगम युग के ब्राह्मण जीवन में हम बहुत बहुत खुशी से निश्चिंत होके अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में हमने भगवान की महिमा सुनी कि वो हजार हाथ वाला है, वो सर्वशक्तिवान है, वो कण कण में है, वो सब कुछ कर सकता है। ऐसी कई महिमा हमने सुनी और गाई भी सही, हम भी गाते थे। लेकिन वर्तमान समय में ये हमें एक चांस मिला है, सबको नहीं मिलता है, हमें ये चांस मिला है जो प्रैक्टिकल में हम हर कार्य उसको सौंप कर निश्चिंत हो जाएं, हर कार्य। ये प्रयोग करने का समय है और जो ये प्रयोग करता है उसकी खुशी सदा बनी रहती है, क्योंकि उसको अनुभव होता है कि हाँ वो मेरे साथ है या मैं उसके साथ हूं, हम साथ साथ हैं, ये उसको सदा अनुभव होता रहता है। तो इस 33 वर्ष के बीके जीवन में, राजयोगी जीवन में, मैंने भी बाबा को हर कार्य सौंप कर उसका सुख लिया है। प्रैक्टिकल ऐसे कई बातें हैं लाइफ में जो मैंने उसको सौंप दी और उसने करके दिखाया सब कुछ, और इतना बेस्ट किया जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जब हम किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपते हैं तो सोचते हैं होगा कि नहीं होगा, फॉलो अप करते हैं, लेकिन भगवान को सौंपने के बाद फॉलो अप भी नहीं करना पड़ता है। तो मैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिकल अपने जीवन से संबंधित कि कैसे हम हर चीज प्रभु को हवाले कर सकते हैं और प्रभु यानी परमात्मा शिव बाबा वो हर कार्य हमारा करता है, हमारा विश्वास चाहिए कि वो करेगा और वो करता है। और आपने अव्यक्त वाणियों में सुना होगा, अभी अभी लास्ट संडे की अव्यक्त वाणी में भी था कि सारा बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हारा बोझ लेने के लिए आया हूं, ये टोकरी सिर पर नहीं रखो, कहा था ना बाबा ने। तो प्रैक्टिकली बाबा ने तो कहा है, लेकिन हम सोचते हैं कि अरे वो करेगा कि नहीं, वो लेगा कि नहीं, चलो हम ही कर देते हैं, बाकी वो तो करने के लिए कह रहा है। और जो सारी दुनिया चला रहा है, सारी दुनिया चला रहा है, क्या वो हमारा काम नहीं कर सकता है? कर ही सकता है, आप सबके भी जीवन के अनुभव होंगे, बस केवल हम विश्वास रखकर सौंप दें उनको, सब उसके हवाले कर दें, फिर देखो कैसा होता है। हम करेंगे तो कुछ गलतियां भी होने की संभावना है, कुछ ऊपर नीचे भी होने की संभावना है, लेकिन जब हम सौंप देंगे तो बेस्ट होगा, जो सोचा उससे भी बेस्ट होगा। हम यहां उदयपुर है राजस्थान में, उसके पास में छोटा सा गांव है 30 किलोमीटर, वहां हम रहे थे, वो हमारा गांव है नेटिव। तो पूरा जैसे गांव में ही बड़े पले, पढ़ाई भी वहीं से की, खेती का काम करना सब वही हमारा था, रोज खेत जाना, खेत का काम करना सब बचपन में वही करते थे, भक्ति मंदिर भी जाते थे, और भक्ति भी बहुत करते थे। रामायण महाभारत वो कथाएं होती थी गांव में, तो पढ़ना सुनना सुनाना वो सब भी चलता था। इवन मंदिर में पूजा भी कर लेते थे, वो भी पार्ट प्ले करते थे। फिर बीकॉम पढ़ने के लिए उदयपुर आए, तो बीकॉम फाइनल ईयर में थे, तो हम एक बार संडे को घर जाते थे। तो घर गए तो माता जी ने कहा कि भाई आपकी सगाई वाले कोई आए थे, लड़की के पिताजी, लेकिन हमने उनको बोल दिया कि अभी वो लड़का तो और आगे पढ़ेगा, अभी हमको सगाई नहीं करनी है। तो ऐसे ही बात आई गई हो गई, लेकिन हमारे मन में जैसे एक नया विचार आया, भाई ये अभी तक तो स्टूडेंट लाइफ थी, लेकिन ये तो जैसे शादी की बात हो रही है, मतलब बड़े हो गए हैं, तो जीवन में कोई दूसरा मोड़ आने वाला है, ऐसा हमें महसूस हुआ कि अब बड़े हो गए हैं। तो सोचने लगे कि भाई लोग शादी करते हैं, क्या पर्पज है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये सब विचार चलने लगे मन में। तो आसपास घरों में देखते थे, जहां भी जाते थे तो उस एंगल से भी देखने लगे, अभी जो नहीं देखते थे पहले अब उस एंगल से देखने लगे। तो भाई सदा खुश रहने के लिए शादी करते हैं ऐसे कहते हैं, हमने देखा खुश तो रहते हैं लेकिन सदा खुश रहते हैं ऐसी बात तो नहीं है, कभी कभी खुशी का ग्राफ ऐसे ऐसे होता है, बर्तन बजते हैं कभी कभी। तो फिर कोई कहते हैं कि भाई अंत तक साथ रहेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, इसके लिए भी शादी करते हैं। पर हमने वो भी देखा कि दोनों में से कोई एक शरीर छोड़ देता है फिर एक ही रहता है, तो अंत तक दोनों साथ ही रहेंगे ऐसा भी कोई गारंटी तो नहीं है। बस ये विचार कर ही रहे थे और बीकॉम पूरा हो गया। फिर सीए करने के लिए हम अहमदाबाद चले गए, तो वहां हमारा एक समाज का हॉस्टल जैसा था, उसमें रह के सीए कर रहे थे। कुछ हमारे और भाई भी साथ में थे जो सीए कर रहे थे, उसमें से एक भाई के पास गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत सी किताबें थी, धार्मिक किताबें। हमको भी अच्छा लगता था, टाइम भी था उस समय, तो खूब पढ़ते थे, मजा आता था। और वो बात मन में थी शादी वाली, करना नहीं करना, क्या करना कैसे करना, वो सब। इसी बीच गांधी जी की जीवन कहानी पढ़ने को मिली, सत्य के प्रयोग। जब वो जीवन कहानी पढ़ी तो मुझे बहुत ही मन में तूफान उठा, बहुत हलचल हुई कि एक साधारण व्यक्ति इतना बड़ा आंदोलन कर सकता है, वो भी कोई हथियार के बिना, केवल मूल्यों के आधार पर कितना बड़ा आंदोलन, और दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्य अंग्रेजों को हटा दिया, भगा दिया, हिला दिया। मैंने कहा मुझे भी जीवन में कुछ विशेष करना है, ये मन में जैसे मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ विशेष करना है। क्या विशेष करना है वो पता नहीं, क्योंकि अंग्रेजों का तो राज्य है नहीं कि आंदोलन करें हम, तो क्या विशेष करना है, बस मन में कुछ विशेष करना है। केवल बड़े हुए, कमाई की, शादी की, परिवार बड़ा, मर गए, फिर दो पीढ़ी के बाद पोतों को भी याद नहीं दादाजी कौन थे, ऐसा जीवन नहीं जीना है। जीवन ऐसा जीना है कि जिसपे हमें भी नाज हो, देश को भी नाज हो, समाज को भी नाज हो, ऐसा कुछ जीवन जीना है। तो जब वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ रहे थे तो उसमें भगवान के साक्षात्कार की बात आती थी कि उसको साक्षात्कार हुआ, उसको दर्शन हुए, उसको ये। मुझे भी विचार आया कि मैं बचपन से भगवान को याद कर रहा हूं, जब बहुत छोटा था दादाजी मंदिर ले जा रहे थे तब से याद कर रहा हूं, और सारी दुनिया याद कर रही है, तो आखिर कहीं तो होगा भगवान। तो हमने सोचा कि जिस भगवान को मैं बचपन से याद कर रहा हूं और सारी दुनिया याद कर रही है, वो कहीं तो होगा, किसी रूप में तो होगा, तो हम उसको हम भी उसका दर्शन करना चाहते हैं, उसका साक्षात्कार करना चाहता है। और यही जीवन का विशेष लक्ष्य, क्योंकि साक्षात्कार सबको नहीं होता है, ऋषि मुनियों को भी नहीं होता है, बड़ों बड़ों को भी। तो मेरे जीवन में अगर मैंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, तो मुझे ये करना है। तो अब मन में लक्ष्य निश्चित हो गया, तो अब उस दिशा में बढ़ने लगे आगे, तो और भक्ति बढ़ा दी और शास्त्रों का ज्ञान बढ़ा दिया। उस समय हम अहमदाबाद से ट्रांसफर होके बड़ौदा चले गए थे, बड़ौदा की बहन जी बैठे हैं, तो हम बड़ौदा चले गए थे उस समय। फिर वहां जब ये भक्ति बहुत कर रहे थे तो किताबों में आता था कि अगर आप गुरु करते हैं तो आपको भगवान के साक्षात्कार में सहजता होती, उसकी गाइडेंस में हो जाता है। हमने कहा चलो गुरु करें, गुरु किया, गुरु मंत्र की दीक्षा ली। अब हमारे मन में 24 घंटे गुरु मंत्र चलता रहता था, इतनी लगन थी कि हम कैसे भी करके साक्षात्कार करें। ऑफिस घर से निकलते थे ऑफिस जाने के लिए, लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, लेकिन मंदिर में जाके हम गीता की बुक मेरे पास होती थी तो गीता पढ़ते थे। रात को फिर लाइब्रेरी जाने के लिए निकलते ऑफिस से, शाम को फिर कहीं कहीं सत्संग में जाते थे। अभी पूरा जैसे लक्ष्य ही वो हो गया कि कैसे भी करके मुझे साक्षात्कार करना है। इधर घर वालों को मैसेज मिला कि ये तो बहुत ज्यादा अभी भक्ति में लग गया है, उनको और चिंता होने लगी, तो वो फिर सगाई के लिए और प्रेशर करने लगे। मैंने कहा नहीं, अभी पढ़ाई पढ़ रहा हूं, अभी मैं पहले कोर्स पूरा करूंगा। एक बार तो गुरु के आश्रम में 7 दिन मौन तपस्या की, कमरे में बंद रह के कि भाई साक्षात्कार हो जावे, पर नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि ऐसे साक्षात्कार नहीं होगा कि हम घर में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसे नहीं। ऋषि मुनि तो हिमालय की गुफाओं में जाके रहते थे, तब साक्षात्कार होता था। तो हमने भी डिसाइड किया कि अभी हमको सब कुछ छोड़ के हिमालय में जाना है और वहीं पर हम तपस्या करके करेंगे। तो मन में डिसाइड कर लिया। तब तक मैं सीए का एक ग्रुप क्लियर हो गया था और दूसरे का एग्जाम दिया था, टोटल 4 ग्रुप होते हैं, तो एक क्लियर हो गया था, दूसरे का एग्जाम दिया था। फिर मैंने सोचा अभी चले जाएंगे हम। तो उसी समय हमारे ऑफिस में वहां कोई एक भाई आए थे नए जॉब के लिए, वहां जॉब ज्वाइन किया। तो उसने देखा मैं गीता बहुत पढ़ता हूं, तो उसने कहा आपको गीता में बहुत रस है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि आपके घर के पास में एक गीता पाठशाला है, आप वहां जाओ आपको मजा आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, अभी 5-10 दिन है अपने को जाने में हिमालय के लिए, तब तक हम यहाँ साथ में बैठ के गीता पढ़ लेंगे। तो मैंने एड्रेस लिया और दूसरे दिन वो गीता पाठशाला में गया। अब मैंने कभी भी ब्रह्मा कुमारी का नाम भी नहीं सुना, न बहनों को देखा, न कोई प्रदर्शनी देखी, सेंटर देखा, कुछ भी पता नहीं था मुझे। वो एक डॉक्टर भाई का घर था, तो घर में गया, छोटा एक कमरा था, तो वहां 8-10 लोग सामने बैठे थे, वो भाई कुछ पढ़ रहे थे, पीछे फोटो लगा हुआ था। तो हमने सोचा कि इनके गुरुजी होंगे, तो मैंने साष्टांग प्रणाम किया और बैठ गया। फिर 5-7 मिनट में वो पूरा हो गया उनका पढ़ने का, फिर सब चले गए। तो मैंने वो भाई को पूछा जो सामने बैठा था, हमने कहा भाई मुझे गीता पढ़नी है, तो क्या मैं यहाँ आकर गीता पढ़ सकता हूँ आपके साथ? तो कि हाँ आप जरूर पढ़ सकते हो, पर आपको 7 दिन का कोर्स करना होगा। मैंने कहा मैंने गीता कई बार पढ़ी है, मुझे याद है गीता, मुझे कोर्स क्या करना है, सब ध्यान में है मेरे। बोले नहीं वो अच्छी बात है, लेकिन ये नया ज्ञान है ना, तो आपको कोर्स करना होगा। मैंने सोचा शायद इनको विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैंने संस्कृत में गीता के 2-3 श्लोक उनको सुनाए कि देखो मुझे सब आता है गीता पूरी। उन्होंने कहा नहीं अच्छी बात है, आपको गीता आती है, लेकिन ये ज्ञान थोड़ा विशेष ज्ञान है, अलग ज्ञान है, तो आपको एक बार 7 दिन का कोर्स करना होगा। मैंने कहा कितनी फीस है, क्योंकि कोर्स की तो फीस होती है। तो यहाँ जगह आगे खाली है, यहाँ आ जाओ भाई, यहाँ बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा फीस कितनी है? बोले नहीं कोई फीस नहीं है, आप 1 घंटा रोज आओ और आप ये कोर्स कर लो। तो दूसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया और मैं पहुंच गया कोर्स करने के लिए। अब उन्होंने बताया कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, और जैसे विश्वविद्यालय में MBBS की डिग्री दी जाती है, लॉ की डिग्री दी जाती है, ऐसे इस विश्वविद्यालय में ये डिग्री दी जाती है। लक्ष्मी नारायण का एक बड़ा फोटो लगा था 4 फीट का, सजा सजाया, तो कहा ये डिग्री दी जाती है लक्ष्मी नारायण की यहां पर। अब वो भाई खुद डॉक्टर, वो मैरिड थे जो पाठशाला चला रहे थे, वो और उनकी युगल रहते थे, लक्ष्मी नारायण भी मैरिड थे, तो मैंने सोचा कि यहां पर जो कोर्स करता है आता है उसको शादी करनी कंपलसरी है। तो मैंने उनको पूछा कि भाई आपके यहां हम ये कोर्स करेंगे तो शादी करना कंपलसरी है क्या? वो मूंज गए, बोले नहीं वो देख लेना आप जैसे। मैंने कहा नहीं मुझे क्लियर करो आप पहले। ये मैंने इसलिए पूछा कि मेरा लक्ष्य था परमात्मा का साक्षात्कार करना, और उसके लिए मैंने तपस्या कर रहा था, गुरु के आश्रम में भी तपस्या की थी मैंने, और वहां सुनने को मिला शास्त्रों में कि भाई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तो ईश्वर का साक्षात्कार सहज होता है। तो हमने प्रतिज्ञा की गुरु के आश्रम में कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। और दूसरा, ये उस समय ये समझते थे कि शादी के बाद तो पवित्र रह नहीं सकते, तो हमने दूसरी प्रतिज्ञा की कि इस जीवन में हम शादी नहीं करेंगे। तो ये दो प्रतिज्ञा हमने भक्ति में गुरु के वहीं कर ली थी, और यहां ये लक्ष्मी नारायण बना रहे थे, तो मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो मैंने पूछा भाई नहीं आप मुझे क्लियर करो कि शादी करना कंपलसरी है क्या आपके यहां आएंगे तो। तो डॉक्टर थे, होशियार थे साकार बाबा के समय के, उन्होंने कहा देखो हम तो भगवान का ज्ञान सुनाते हैं, अब शादी करना या नहीं करना ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, आपकी इच्छा है तो करो, नहीं इच्छा है तो नहीं करो, लेकिन आप ज्ञान सुनो। हमने सोचा चलो ठीक है सुन लेते हैं, अब हिमालय में तो जा ही रहे हैं, थोड़े दिन है तो सुन लेते हैं। तो फिर मैंने कोर्स शुरू किया, तो पहले दिन आत्मा का बताया, अब मैंने कुछ पढ़ा था ये कुछ बता रहे थे, दूसरे दिन परमात्मा का बताया, अब दिमाग में बहुत हलचल होने लगी, बहुत तूफान उठने लगे, भाई ये क्या है, मैंने अब तक जो पढ़े इतने शास्त्र पढ़े, ऐसे ऐसे शास्त्र पढ़े थे जो घरों में नहीं होते, वशिष्ठ रामायण और ऐसे सब, तो और ये कुछ अलग बता रहे हैं, लेकिन ये जो बता रहे थे उसमें मुझे एक लॉजिक दिखाई दे रहा था कि भाई आत्मा ज्योति बिंदु, आत्मा का पिता भी ज्योति बिंदु, बात थोड़ी ठीक लग रही थी, एक लॉजिक था, एक सीक्वेंस थी, जैसे गणित में 2+2 करते हैं तो 4 हो जाते हैं ना, ऐसे इनकी बातों में मुझे अच्छा लग रहा था। पर मैंने इतने साल जो पढ़ा उसका क्या, इतना सुना इतना पढ़ा वो क्या गलत है, ये क्या सही है क्या नहीं है, ऐसे तूफान उठने लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं चलो करो कोर्स, हम भक्ति, उस समय भी मैं 3:30-4 बजे उठता था, नहा धो के गुरु के मंत्र की 21 माला का जाप करना वो सब, मैंने कहा ये तो चालू ही है अपना, इनका सुन लेते हैं, सुनने में कोई हर्जा नहीं है। तो बड़ा मन को मजबूत करके कोर्स आगे बढ़ाया। 5वें दिन जब सीढ़ी का लेसन हुआ, 84 बर्थ का सीढ़ी का पूरा जब हुआ, तब ज्ञान बिल्कुल क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया जैसे बादलों के छंटने से सूरज की रोशनी धरती पर कैसे आ जाती है, ऐसे ज्ञान सूर्य की रोशनी सीधी आत्मा पर जैसे पड़ी, और सर्व जो संशय के बादल थे, अज्ञान के बादल थे, वो सब छट गए, और मुझे वो अनुभव हुआ कि साक्षात भगवान मुझे मिल गया। जिस साक्षात्कार की इच्छा थी मुझे 5-10 सेकंड की, वो अनुभव हो गया कि अभी साक्षात भगवान ही मुझे जीवन भर के लिए मिल गया, 5-10 सेकंड नहीं लेकिन जीवन भर के लिए साक्षात भगवान मिल गया, वो मुझे अनुभव हुआ। फिर मैंने बाकी का 2 दिन का भी कोर्स सब पूरा किया। जब कोर्स पूरा हुआ फिर 8वें दिन उन्होंने कहा आप आज मुरली क्लास में आना, तो मैं 8वें दिन मुरली क्लास में गया, तो मुरली सुनी, फिर मुरली के बाद उन्होंने कहा अभी आप सामने आके सबको अपना परिचय दीजिए। अब चूंकि ज्ञान एकदम क्लियर था, और 5वें दिन ही जब ज्ञान क्लियर हुआ, मेरी भक्ति ऐसे पूरी हुई कि जैसे इस जन्म में मैंने भक्ति की नहीं हो, ऐसे पूरा फुल स्टॉप लग गया, और एक मैं और बाबा, बस मन में यही हो गया, उसी दिन से वो निश्चय हो गया। फिर जब 8वें दिन परिचय के लिए बुलाया, तो मैंने बड़ी विश्वास के साथ और नशे के साथ कि ये शरीर का नाम ललित है और अभी CA की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान क्लियर था बिल्कुल माइंड में कि अभी क्या है हम और क्या करना है। तो उन्होंने कहा अच्छा अब आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, होशियार थे डॉक्टर थे तो पूछा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो हमने बहुत विश्वास, जो विश्वास उस समय था वो विश्वास आज दिन तक है, और समझ के साथ हमने बोला कि अभी हम सतयुग में पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ जो उनका सखा है ना, जो सारा दिन श्री कृष्ण के साथ रहते हैं वो सखा वाला पार्ट हम प्ले करेंगे, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। अभी ये नहीं कि लक्ष्मी बनेंगे नारायण बनेंगे या वो नहीं, लेकिन कृष्ण के सखा वाला पार्ट मुझे प्ले करना है। तो वही लक्ष्य मेरे जीवन में तब से लेके वो फिक्स बसा हुआ है। अब लक्ष्य को जीवन में धारण करने से क्या फायदा होता है वो आप देखो। परिवार से तो कोई ज्ञान में था नहीं, और भी विरोध था। जब उनको पता लगा कि ब्रह्मा कुमारीज करके कोई संस्था है उसमें जाने लगा, तो परिवार वालों ने इधर उधर से पता किया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है, तो उनको और नेगेटिव सुनने को मिला कि आपके लड़के को ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा सब। तो और विरोध बढ़ गया कि अब तो जल्दी से जल्दी सगाई करो, शादी करो, जल्दी से जल्दी करो, तो वो विरोध बढ़ गया। आपने बहनों के लिए सुना होगा बांधेली पार्ट है, मेरा 7 साल बांधेले का पार्ट रहा था, 7 ईयर्स मेरा बांधेले का पार्ट था पूरा। तो ऐसी परिस्थिति थी, और पाठशाला में क्लास करता था वहां, तो मैं सोचता था बाबा श्री कृष्ण ने सारे विश्व की सेवा की तब उन्हें श्री कृष्ण का पद मिला, अब श्री कृष्ण का सखा बनना है तो उसको भी तो सारे विश्व की सेवा करनी पड़ेगी, तब तो श्री कृष्ण का सखा बनेगा, बाकी कैसे बन सकता है। अभी मैं तो पाठशाला में क्लास कर रहा हूं, सारे विश्व की सेवा कैसे कर सकता हूं, आप ही बताओ कि कैसे कर सकता हूं। बाबा से बात करता था, मुझे बनना तो है, करना भी है सेवा सारे विश्व की, लेकिन कैसे करना है वो मुझे नहीं पता है, आप कुछ विधि रचो जो सारे विश्व की सेवा कर सकूं, पर मुझे बनना है और आपको बनाना है, आप जैसे भी बनाना चाहो, उसके हवाले कर दिया, आप जैसे करना चाहो। अब देखो ड्रामा कैसे मदद करता है। जब हमारा लक्ष्य निश्चित होता है तो परमात्मा, ड्रामा, परिवार, वातावरण, वस्तु, स्थान, सब हमारी मदद करते हैं। हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, हमारे मन में वो भाव फिक्स होना चाहिए, फिर देखो सबकी मदद मिलती है। तो जब ये था तो ड्रामा मुझे वो पाठशाला से सब सेंटर, सेंटर, सब जोन, जोन सब में सेवा करवाते करवाते, अनुभव करवाते करवाते आखिर मधुबन में लाके बिठा दिया। तो फुल टाइम मधुबन में सेवा में आ गए, और मधुबन में भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सेवा में, कि जहां पर पूरे भारत की सभी बड़ी बहनें उस समय 97 की बात है, तो सभी बड़ी बहनें अपना अकाउंट लेके चेक करवाने आती थी, तो सभी से कनेक्शन हो गया। और इतना नशा चढ़ता था मुझे कि भक्ति में देवियों के दर्शन के लिए क्या क्या तपस्या नहीं की, कहां कहां नहीं गए, भूखे तरसे पैदल, तब एक टांग पे खड़े होना, कितनी कितनी बातें किया, तब देवियों के दर्शन, वो भी एक मिनट आधा मिनट में निकाल देते थे मंदिर से, इतना रश होता था, सब करते थे। और यहां मैं कितना मेरा भाग्य है जो सभी देवियां सामने से दर्शन देने के लिए मेरे पास आ रही है, कितना बड़ा भाग्य की बात है। इतना नशा चढ़ता था कि सभी देवियां दर्शन देते, सामने बैठती थी, और अकाउंट में भूल नहीं निकले इसलिए योग करती थी मेरे सामने बैठ के कि इनके अकाउंट में कुछ भूल नहीं निकले हमारी। तो इतना नशा चढ़ता था मुझे। तो ऐसे पूरे भारत में, और जब बहनों से जुड़ते हैं तो क्लास के भाई बहनों से भी जुड़ जाते हैं, बीज से जुड़ते हैं तो वृक्ष से ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं। तो ऐसे पूरे भारत से जुड़ गया, बाबा ने पूरे भारत की सेवा करवाई। फिर रमेश भाई जी के साथ 20 वर्ष तक सेवाएं की, 97 से 2017 तक 20 वर्ष तक रमेश भाई जी के साथ सेवाएं की। और जब 2017 में भाई साहब ने देह त्याग किया तो उसके बाद विश्व के सभी सेवा केंद्रों से भी जुड़ना हो गया, वहां के कारोबार में भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो विश्व से जुड़ना हो गया। तो इस प्रकार से एक संकल्प किया था कि विश्व सेवाधारी बनना है, तो वो संकल्प में निश्चय ने देखो कहां गीता पाठशाला से से अनुभव दिलाते दिलाते विश्व सेवा में बता दिया। तो हमारे जीवन का अगर लक्ष्य निश्चित होता है तो हमें हर प्रकार से मदद मिलती है और जीवन में वो प्राप्ति भी होती है, सफलता भी मिलती है। तो ऐसे ये यात्रा आगे बढ़ी। अभी जब बाबा का ज्ञान मिल गया तो फिर मैंने सोचा कि अब सीए क्यों करने का, दो ग्रुप क्लियर हो गए थे तब तक, दो बाकी थे। मैंने कहा क्यों करने का, जब मैं पहले ही सन्यासी बनने वाला था उसके साक्षात्कार के लिए, अब जब वो साक्षात मिल गया तो फिर मुझे किस बात की चिंता, तो मुझे नहीं करना है सीए। तो बहन जी को बोला, दीदी मुझे अभी सीए नहीं करना है, मैं बाबा की सेवा करूंगा। तो दीदी ने कहा कि आपको बाबा की सेवा ही करनी है ना, तो कहा तो फिर जनरल सेवा तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो सीए वाली सेवा है ना वो सीए ही कर सकता है। इसलिए आप ये नहीं सोचो कि पढ़ने में टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आप यही सोचो कि इसी ये पढ़ने में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और ये डिग्री से बाबा आगे बहुत सेवा कराएगा, इसलिए आप पढ़ाई करो और डिग्री लो। मैं बाबा के कमरे में गया, मैं शुरू से ज्ञान में आया तो दो चीजें बहुत पक्की की, प्रैक्टिकल की दो चीजें। एक तो ये थी कि जो भी कोई सेवा सौंपे, घर से लौकिक में, अलौकिक में, ऑफिस में, सेंटर पे, फ्रेंड्स, कोई भी सेवा सौंपे तो वो सेवा जाके बाबा को सौंप देने का, बाबा के हवाले कर देने का कि बाबा ये सेवा मिली है आप जैसे कराओ, वो एक तो बाबा के हवाले कर देने का। दूसरा, हर छोटी से छोटी बात वो दीदी के साथ, निमित के साथ शेयर करने का, निमित के साथ चार्ट क्लियर रखने का, ताकि हमको इशारा मिल जाए, कहीं गलती नहीं हो, और कुछ हो तो वो जवाबदार बन जाए, निमित जवाबदार बन जाए। तो इसलिए निमित को हर बात कह के, उनकी श्रीमत लेके, उनकी सलाह से आगे बढ़ने का, ये दो चीजें मैंने बहुत पक्की की थी शुरू से। तो जब निमित ने बोला कि आप डिग्री लो, तो मैं बाबा के कमरे में गया, बाबा को बोला बाबा मुझे अभी पद पे ऐसा पोजिशन नहीं चाहिए, लेकिन इस डिग्री से कोई सेवा लेनी हो आपको भविष्य में तो ये डिग्री आप मुझे दिला देना, मैं पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बोल दिया बाबा को। अब मैं अहमदाबाद आ गया था वापस बड़ौदा से, तब तक मेरा आर्टिकलशिप पूरा हो गया तो मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था अहमदाबाद में। वहां एक कमरे में मैं और मेरा कजिन दोनों सीए करते थे, तो हम किराए पर रहते थे, भोजन बनाते थे और पढ़ाई करते थे, एग्जाम देते थे। तो मैं अमृत वेला, फिर मुरली क्लास, फिर सेंटर पर सेवा, जॉब, फिर रात को आता था तो किताब हाथ में लेके सोया सोया पढ़ता था, नींद आ जाती, किताब साइड में गिर जाती और ऐसे चल रहा था। तो मेरा वो कजिन बोले, ललित मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ, तू सीए में पास नहीं हो सकता, कि मैं यहाँ 12-14 घंटा पढ़ता हूँ, रोज बैठ के नोट्स बनाता हूँ, और तू आता है केवल किताब लेके सो जाता है, ऐसे कोई सीए पास होगा क्या। मैंने कहा देखो भगवान की जो इच्छा, लेकिन मेरा डेली का अमृत वेला, मुरली क्लास सब रेगुलर होता था, सेवाएं भी, इवन एग्जाम के दिन जब इतना इम्पोर्टेंट टाइम होता है कि 8 बजे से एग्जाम है तो भी मैं पहले सेंटर पर जाता, 2 मिनट बाबा के कमरे में बैठता, मुरली का सार पढ़ता, फिर मैं एग्जाम हॉल में जाता था। ड्रामा अनुसार हर 6 महीना में सीए का एग्जाम होता है, तो हर 6 महीने में मैं एग्जाम दिया तो 2 एग्जाम में मेरे दोनों ग्रुप क्लियर हो गए और मैं सीए पास हो गया। और मेरे सीए पास होने के 3 साल बाद 6 ग्रुप उसने और दिए, तब मेरा वो कजिन पास हुआ और बाबा ने मुझे जो है 2 ग्रुप में ही पास करवा लिया पूरा। तो इसमें कोई आशीर्वाद या कृपा की बात नहीं थी बाबा की, लेकिन जो राजयोग का अभ्यास करते हैं उससे हमारे मन के वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं और पॉजिटिव थॉट्स बढ़ते हैं। तो जो पढ़ते हैं वो याद रह जाता है, और जो वो एग्जाम हॉल में बैठते हैं तब जो प्रश्न पत्र आता है तो वो याद आ जाता है पढ़ा हुआ, वो इम्पोर्टेंट बात होती है, तो मन शांत होता है तो वो याद आ जाता है। तो ऐसे बाबा ने पास करवा दिया तो सीए बन गए। इधर घर वालों का बहुत प्रेशर मैरिज के लिए, टू मच प्रेशर कि अभी करना ही है करना ही है, वो तो कब से कर रहे थे। मैं एक ही बहाना दिया हुआ था कि पहले तो ये था कि भाई सीए होंगे तब देखेंगे, अब सीए भी हो गए तो वो बहाना खत्म हो गया। तो फिर मैंने एक और बहाना दिया कि भाई मैं तो देखो ऐसे ब्रह्मा कुमारीज में जाता हूँ, पवित्र जीवन जीना है मेरे को, तो ऐसी कोई लड़की मिलेगी जो पवित्र जीवन जीने वाली होगी तो हम शादी कर लेंगे, बाकी जो है हम नहीं करेंगे। तो ऐसे करके ये बहाना दे दिया था मेरा। अब घर वाले बहुत नाराज, पिताजी बहुत गुस्सा करे। एक बार तो घर पे गए, घर पे मैं जाता था घर पे, तो शाम को घर पे सभा लग जाती थी, मेरा ज्ञान सुनने के लिए नहीं, मुझे सुनाने के लिए कि देखो गृहस्थ कितना अच्छा है, राम भी गृहस्थी में थे, कृष्ण भी गृहस्थी में थे, ये वो, आप भी शादी करो, ये करो, वो सुनाने के लिए। मैं मुस्कुराता रहता था, बैठे रहता था। एक बार पिताजी ने कहा घर में सभा में कि बता आप तेरी फाइनल इच्छा क्या है। मैंने यही कहा पवित्र रहना है, आपकी सेवा भी करेंगे, तपस्या भी करेंगे वो सब। तो इतना गुस्सा आया उनको, बोले आज के बाद घर में, इस गांव में पैर रखा तो पैर काट दूंगा, इतना उनको गुस्सा आया। मैंने बताया 7 साल बांधेला का पाठ था हमारा, वो चल रहा था। एक बार घर पे गए तो माताजी पिताजी ने कहा चलो एक जगह जाना है, बताते नहीं थे कहाँ जाना है, कहा एक जगह जाना है, चलो हम गए। तो फिर रास्ते में पता चला मुझे कि हमारे जो समाज के गुरु थे उनका सत्संग चल रहा था, वहां मुझे ले गए। तो 5 बजे का टाइम, पहुंचे हम शाम को, तो सत्संग उस समय नहीं था, वो कमरे में थे। तो हमारे एक रिलेटिव उनको ले, हमको लेके गए उनके कमरे में। वो सामने सोफा पर बैठ के अनारदाना खा रहे थे, कटोरी में से चम्मच लेके खा रहे थे, और हम सामने बैठे, सबने प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया, बैठ गए। तो हमारे वो रिलेटिव ने कहा कि ये फलाने गांव से आए हैं, ये लड़के ने सीए किया है लेकिन ये शादी नहीं कर रहा है, घर वाले परेशान है सब, आप उनको कुछ कहो। तो गुरुजी ने मुझे पूछा क्या नाम है, तो मैंने कहा शरीर का नाम ललित है। अब जैसे ही मैंने कहा शरीर का नाम ललित है, उन्होंने वो कटोरी टेबल पे रख दी, क्योंकि ऐसा जवाब तो वो आज दिन तक किसी ने दिया नहीं, उन्होंने सुना नहीं, तो कटोरी वहां रख दी। फिर अच्छा आत्मा का क्या नाम है, मैंने कहा गुणवाचक कुछ कह दीजिए, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप। क्या करते हो, मैं ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग का अभ्यास करता हूं। अच्छा, उनकी आंखों में चमक आ गई एकदम, अच्छा ब्रह्मा कुमारीज में, बहुत अच्छा राजयोग का अभ्यास, आपका जीवन तो बहुत अच्छा है, बहुत निर्मल जीवन है, बहुत आपकी तपस्या है, बहुत अच्छा है। वो महिमा करने लगे, बोले मैं एक बार आबू रोड में मेरा भी सप्ताह जी का कार्यक्रम था, तो प्रकाशमणि दादी जी ने मुझे शॉल पहना के मेरा अभिवादन किया था, और बहुत आपका जीवन तो श्रेष्ठ जीवन है, मेरी महिमा करने लगे। तो वो पिताजी ने सोचा ये ट्रेन तो कोई दूसरे ट्रैक पर चढ़ गई है, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी लेकिन ये शादी नहीं कर रहा है और घर में सब परेशान है, समाज में सब कहते हैं, तो आप इसको कुछ कहो। तो फिर वो गुरुजी ने पिताजी को कहा कि अच्छा ये बताओ कि इसमें कितने अवगुण हैं। तो पिताजी ने कहा कि नहीं अवगुण तो नहीं है, क्योंकि हमने जीवन में परिवर्तन कर लिया था बाबा के बनने के बाद अच्छी तरह, केवल ये एक ही बात उनकी नहीं मानते थे, बाकी तो सब प्रकार से हम अपने को आपको चेंज कर लिया था। तो कहा नहीं अवगुण तो नहीं है। कहा अच्छा इसके कितने दोस्तों में इसके जितने गुण है। तो पिताजी ने कहा गुण तो बहुत है। कहा देखो आप बहुत भाग्यशाली हो, माता पिता को उन्होंने कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हो, जो योगी बच्चे ने आपके घर में जन्म लिया है फिर भी अभी तक घर में रह के आपकी सेवा कर रहा है। योगी तो उड़ते पंछी होते हैं, ये कहीं चला गया होता तो आप क्या करते, ये तो फिर भी घर में रह के आपकी सेवा कर रहा है। फिर उन्होंने एक और बड़ी बात बताई, उन्होंने कहा देखो मैं घर से भाग के आया हूं, तो गुरुजी ने क्या कहा, मैं घर से भाग के आया हूं और आप मेरी पूजा करते हो, तो ये तो आपके घर में रह के आपकी सेवा कर रहा है, तो आपको क्यों विरोध है इससे, आप उसको सपोर्ट करो। ऐसे करके माँ बाप को समझाया। और फिर मुझे कहा कि आज आप यहां रुकेंगे, शाम को सत्संग है तो रुकेंगे। मैंने कहा हाँ भले रुक जाएंगे। पिताजी ने बोला नहीं नहीं बहुत जरूरी काम है, हम तो थोड़े समय के लिए आए थे, हमको अभी जाना है, ऐसे करके वापिस ले गए, कि उनको लगा कहीं यहीं रुक जाएगा कहीं, तो चले गए। तो ऐसे मतलब बहुत घर वालों ने बहुत प्रयास किया हर प्रकार से। अच्छा जो भी आता था मैं तो यही कहता था, जैसे सगाई के लिए जो भी आता था तो यही कहता था कि भाई हम तो पवित्र जीवन जीना है, ये जीना है। तो क्योंकि मुझे ये था कि हमारा समाज ऐसा है कि जिसमें भाइयों को भी साधु बनने का या सन्यासी बनने का या ऐसा वो नहीं है, छुट्टी नहीं होती। जैसे जैन समाज में कोई सन्यासी बनते हैं तो कितना जुलूस निकालते हैं और उसका प्रोग्राम करते हैं, वो सब होता है। हमारे समाज में ऐसा नहीं था, तो मैंने सोचा ऐसी कोई बहन तो होगी नहीं कि जो ऐसे कोई पवित्र जीवन या सोच सके, ऐसा परिवार वाले उसको करेंगे नहीं। इसलिए मैंने ये बहाना दिया कि ऐसी कोई लड़की मिलेगी तो शादी कर लेंगे। तो मैं निश्चिंत था कि ऐसी तो कोई मिलने वाली है नहीं। एक तो कोई भी मेरे वहां भी आता था, अहमदाबाद में मैं रहता था, तो कोई लड़की के पिताजी आते थे तो मैं उनको ये बताता था पूरा मेरे जीवन का, तो वो चले जाते थे। एक बार एक भाई आया था ऐसे ही, उसको भी मैंने यही कहा कि मैं तो पवित्र जीवन जीऊंगा और ऐसा सन्यासी जैसा मेरा लाइफ है, ये है वो है, चला गया। थोड़े दिनों बाद एक जगह हमारा परिवार का बड़ा कार्यक्रम था, तो सब इकट्ठे हुए थे परिवार वाले। तो फिर हमारे माताजी ने और मामी जी ने कहा कि अभी एक जगह चलना है तेरे को, पता था नहीं कहाँ जाना, एक जगह चलना है। मैंने कहा ठीक है। शाम रात का टाइम था, हम गए। जब घर जिनके घर पे गए, हमारे रिलेटिव का ही एक घर था, मुझे पता लग गया यहाँ क्यों लाया है, क्योंकि वो मेरे मम्मी के मौसा जी का घर था। तो वो मौसा जी ने कुछ सालों पहले उनकी डेथ हुई थी और वो पूर्वज के रूप में उनके बहू के शरीर में आते थे, ऐसे हमारे समाज में होता है, दूसरी जगह भी होता है, तो वो पूर्वज के रूप में आते थे। लेकिन वो पावरफुल सोल थी, तो उनको कुछ भी पूछते तो वो सजेशन देते थे, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी का क्या है क्या है प्रॉब्लम, तो वो सजेशन देते थे और उनका काम हो जाता था। तो वो मेरे को वहां लेके आए ये शादी के कहने के लिए। तो मैंने भी बाबा को याद किया, बाबा आज तो बड़ा पेपर है, आप देख लेना, आपके हवाले है सब चीज। तो उन्होंने वो बैठे, फिर वो लेडीज बैठी, फिर वो आत्मा का आह्वान किया, अगरबत्ती लगाई और वो सब। मैंने भी बाबा का आह्वान किया, बाबा वो आत्मा तो आप परमात्मा, तो आप देख लेना आगे कि कैसे संभालना है, क्या करना है, मुझे ये सब तो पता नहीं है, आप देख लेना कैसे क्या करना है। जब वो आत्मा आई तो हमारे मामी जी ने कहा कि ये अपना ललित जो है अभी नौकरी भी कर रहा है, सब है, लेकिन शादी नहीं कर रहा है, कितना समाज में सब कहते हैं, आप इसको मन बदलो, इसका शादी कराओ, इसको ये जहां जाता है वहां उसको जाने का बंद करो, ये सब करो। तो उन्होंने कहा कि देखो, वो आत्मा ने उस लेडीज के शरीर से कहा कि देखो ये जहां जाता है ना वो भगवान का काम है, बहुत अच्छा काम है, आप इसको रोको नहीं, यहां ये जहां जाता है। उस आत्मा ने खुद कहा कि इसको रोको नहीं, ये भगवान का काम है, अच्छी जगह जाता है ये। कहा लेकिन इसको कहो कि ये शादी करे, इसका मन बदलो, घर में सबसे बड़ा लड़का ये है, मेरे बाद दो छोटी बहनें और एक छोटा भाई, हम चार भाई बहने थे। तो कहा कि इसका मन बदले। तो उन्होंने कहा देखो मैं गारंटी तो नहीं लेता हूं कि इसका मन बदल जाएगा, मैं कोशिश करूंगा। उन्होंने गेहूं के 5-6 दाने मुझे दिए कि ये 6 महीने तक अपने पास रखने का, एक भी दाना गिर गया तो मैं बीमार कर दूंगा तेरे को ये। और उनको कहा परिवार वालों को कि मैं कोशिश करूंगा कि इसका मन बदले शादी के लिए, बाकी मैं गारंटी नहीं लेता हूं। कहा ठीक है। मैंने दाने रख लिए। मैंने कहा बाबा आप जानो क्या करना है कैसे करना है। अभी दूसरे ही दिन उसी प्रोग्राम में वहीं थे, तो दूसरे दिन ही मेरे मामा जी मेरे पास आए, कहा कि चलो लड़की देखने जाना है। मैंने कहा कहाँ लड़की देखने जाना। बोले वो अहमदाबाद में आए थे ना तुमसे मिलने के लिए, तो वो आए हैं अभी और कह रहे हैं पास में ही उनका दूसरा शहर है तो वहां लड़की देखने जाना है। मैंने कहा भाई वो तो उस समय चले गए थे बात के, नहीं नहीं वो आए हैं और वो उनकी लड़की तैयार है ऐसा जीवन जीने के लिए। मैंने कहा ये तो मुसीबत हो गई, हम तो सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा कोई तैयार होगा। अब मैं अपने ही बात में फंसा हुआ था, यूं क्या करूं। मैंने तो कहा हुआ था भाई ऐसी कोई लड़की मिलेगी तो कर लेंगे, मैं तो फंस गया। अब मुझे जाना पड़ा, गए। अब कोई संकल्प तो है ही नहीं उस चीज का, लेकिन अब गए बैठे वहां, वो नाश्ता वास्ता लाए उन लोगों ने किया, उन लोगों ने जो पूछना था वो लड़की से सब पूछा किया। और फिर 15-20 मिनट बाद के अच्छा हम निकलते हैं, हमारे मेरे साथ जो मेरे बहनोई जी मामा जी सब थे उनका, अभी हम निकलते हैं। मैंने कहा ये गड़बड़ हो जाएगी, ये कहीं मेरी हाँ समझ लेंगे कि भाई मैंने हाँ बोल दिया है ऐसा। तो मैंने कहा कि मेरे को थोड़ा बात करना है, इसके बात करना है। तो पास में ही एक गार्डन था तो वहाँ गए हम। तो मैंने उसको पूरा समझाया कि मेरा जीवन कैसा है, जीवन पवित्र जीवन जीने की प्रतिज्ञा ली हुई है और सन्यासी जैसा ये वो सब समझाया उसको अच्छी तरह से कि ये सहज नहीं है, मतलब मेरे तो जीवन का लक्ष्य है ऐसे। तो आप है ना अपने पिताजी को मना कर देना कि लड़का बहुत लंबा है उनको पसंद नहीं, ऐसे करके आप मना कर देना, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, आप मना कर देना। ऐसे करके वहां से आ गए। रास्ते में उन्होंने पूछा क्या हुआ, हाँ बोला ना बोला क्या। मैंने कहा ना ही बोलेगी ना, कोई भी होगी तो ना बोलेगी, आप लोग ऐसे ही जबरदस्ती करते हो ये करते हो। वो बात आई गई हो गई। थोड़े दिन बाद मैं अपने ऑफिस में बैठा था, अहमदाबाद जॉब कर रहा था, वहां बैठा था। तो वो लड़की के पिताजी वापिस आए, मेरा माता ठनका ये क्यों आए वापिस। तो कहा कि आपके पिताजी से मिलना है। कहाँ मिलेंगे? मैंने कहा क्यों मिलना है? तो कि वो बात आगे करने के लिए, आगे की डेट डिसाइड करे, बात करे। मैंने कहा आपकी लड़की ने हाँ बोला है? तो कि हाँ हाँ बोला है, तभी तो आया हूं। मैंने कहा ये क्या, मेरे तो पैर के नीचे से धरती खिसक गई। मैंने कहा ये क्या हो गया। मैंने कहा भाई देखो हमारे पिताजी अभी एक मेले में गए हुए हैं, वो थोड़ा उनको 5-7 दिन लगेगा, फिर आप मिल सकते हो। फिर मैंने कहा आपके घर का नंबर दो, उस समय लैंडलाइन हुआ करता था, मोबाइल नहीं था। मैंने कहा घर का नंबर दो और वो आपकी लड़की का नाम क्या है, वो भी पूछा, घर का नंबर भी लिया। जब वो गए तो फोन किया उसको, मैंने कहा भाई आपके पिताजी मिलने आए थे? तो कि हाँ वो आने वाले थे। मैंने कहा आपने हाँ बोला? तो कि हाँ हाँ बोला। तो मैंने कहा पवित्र जीवन बोल रहा था। मैंने कहा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और ये सब मेरे नियमों में है। तो कि हाँ वो तो मैं समझ गई थी, अच्छा है ना, उसमें बुरा क्या है। मैंने कहा कमाल है, ये तो पीछे ही पड़ गई। मैंने कहा देखो आप जल्दी नहीं करो, कोई भी आप जल्दी फैसला नहीं करो, सोचो आराम से। ऐसा है तो हम एक बार वापिस मिलते हैं और बात करते हैं। फिर हम एक बार वापस मिले, उनको समझाया, बहुत लंबा समझाया सब कुछ। फिर जहां मैंने कोर्स किया था वहां ले गया उनको, वहां तो वहां जो वो बहन थी उन्होंने भी उसको समझाया कि ये ललित तो शुरू से ही सन्यासी है, न इसको खाने का शौक, न पहनने का शौक, न घूमने का शौक, कुछ नहीं है। ये तो इसके जीवन का ही लक्ष्य ऐसा था, तेरे जीवन का तो ऐसा लक्ष्य कोई है नहीं, तू कैसे जिएगी, ये तो जी लेगा क्योंकि इसका तो जीवन का लक्ष्य है, तू क्या करेगी। ऐसे उसने भी बहुत समझाया, सब हुआ। फिर मैं उसको रेलवे स्टेशन छोड़ने गया तो लास्ट में जब जा रही थी तो यही कहा मेरे निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं है, अब मेरे लिए तो ये काटो तो खून नहीं वाली बात हो गई कि अब मैं क्या करूं, मैं बाबा को इतना याद करूं, बाबा ये मैंने गलती कर दी जो मैंने बहाना दिया था, लेकिन अब मैं ये गलती नहीं करूंगा, आप प्लीज मुझे बचा लो। बहुत योग, तभी मैं ये ज्वालामुखी योग क्या होता है तब मुझे पता चला कि योग करता था बाबा से। फिर थोड़े दिन हुआ, फिर पिताजी का मैसेज आया कि मामा जी के घर पे मीटिंग रखी है आगे का सब फाइनल करने के लिए, तुम आ जाओ मीटिंग में। तो मेरा कजिन जो मेरे साथ पढ़ता था उसको मैं लेके गया। मैंने कहा भाई तू तो मना कर देना, तू मेरा जीवन जानता है, मेरे जीवन का लक्ष्य जानता है, विश्व सेवा मुझे करनी है, तू तो मना कर दे कम से कम। लेकिन वो भी यही चाहता था कि हाँ मेरी शादी हो, वो क्यों मना करने लगा। मैं बहुत बाबा को याद कर, बहुत याद किया, बाबा अब कैसे भी करके आप बचा लो मुझे, इस बार बचा लो। भक्ति में कहते हैं द्रौपदी की लाज बचाई, वो तो पता नहीं बचाई कि नहीं बचाई, पर अभी मेरी लाज बचा लो आप कैसे भी करके, मुझे इस पेपर में से पास कराओ। मीटिंग में गए, बैठे, बाबा को आह्वान किया बाबा आप कर लो। मुझे वो किस्सा याद आ रहा था कि जब रावण ने और कुंभकर्ण ने, विभीषण ने, सबने भगवान की तपस्या की थी शिव जी की, शिव जी प्रसन्न हुए तो वर मांग रहे थे। तो कुंभकर्ण के मन में था कि मुझे इंद्रासन चाहिए, तो देवताएं सब घबराए हुए थे कि ये इंद्रासन मांग लेगा तो हमारा क्या होगा। तो सब ब्रह्मा जी के पास गए कि ये प्रभु बचाओ हमको। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को कहा कि आप उसकी जीभ पर जाके बैठ जाओ और उससे दूसरा बुलवाओ कुछ। तो जब शिव जी ने कुंभकर्ण को पूछा बोल तुझे क्या चाहिए, तो कहा मुझे निद्रासन चाहिए, इंद्रासन की जगह निद्रासन बोल दिया। तो भगवान ने तथास्तु करके वो 6 महीना उसका नींद में निकलने लगा। तो मैंने कहा प्रभु आप भी कुछ लीला करो अभी और मुझे ये बचाओ, ये अंतिम पेपर है मेरा, इसमें से आप निकालो मेरे को। इतना बाबा को याद कर रहा था। तो पिताजी ने वो मेरे कजिन को पूछा कि अच्छा, क्योंकि गुस्सा करते थे तो मेरे से तो डायरेक्ट नहीं बात करते थे, उसको पूछा अच्छा क्या इच्छा है अब इसकी फाइनल। तो वो कजिन ने कहा कि देखो इसने तो कहा हुआ है कि ऐसी लड़की मिलेगी तो ये करेगा शादी, बाकी लड़की भी हाँ कर रही है, अब आपकी इच्छा पर है आपको आगे क्या करना है, आप डिसाइड करो। तो पिताजी अचानक बोले कि अगर इसको ऐसा ही जीवन जीना है तो ये अकेला ही बहुत है, 2 को लाके क्या करेंगे। तो पिताजी इनके मुंह से ही बाबा ने ये बुलवा दिया कि ये अकेला ही बहुत है, 2 को लाके क्या करेंगे। तो वो मेरा परीक्षा का पेपर उस दिन क्लियर हुआ। मैं बाबा को इतना थैंक्स करूं कि कमाल है बाबा, जिंदगी में कोई बहाना नहीं करूंगा, हाँ जी के सिवाय मैं कुछ नहीं करूंगा, ये आपने मुझे इसमें से बचा लिया बहुत। तो वो पेपर तो वहां पूरा हो गया, लेकिन दादी जी थे जी जी, तो मतलब बहुत था इस प्रकार से, बहुत बातें हुई। मैंने भक्ति में एक जब गीता पढ़ता था ना तब एक श्लोक पढ़ा था और तभी मैं भगवान को समर्पित हो गया भक्ति में ही, वो श्लोक के द्वारा। वो श्लोक था अनन्यस चिंतयंतो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभि युक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम। उसका अर्थ है जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेगा उसकी समस्त जवाबदारी मेरे ऊपर है, उसका योगक्षेम मैं वहन करूंगा। योगक्षेम का अर्थ है अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, प्राप्ति की रक्षा करना। तो भगवान खुद गारंटी ले रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेगा उसको समस्त प्राप्ति कराना, उसकी रक्षा करना, उसकी जवाबदारी वो मेरे ऊपर है। जब इस श्लोक का अर्थ मैंने समझा, मैंने कहा जब भगवान सारी जवाबदारी लेने को तैयार है तो इससे सस्ता सौदा क्या होगा। जब भगवान सारी जवाबदारी ले रहा है तो वो सौदा भगवान से कर लिया। शर्त क्या है? एक ही है, अनन्यस चिंतयंतो माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेगा। मैंने कहा केवल भगवान को याद करना है, बाकी सारा काम वो करेगा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो जब बाबा को, बाबा का परिचय मिला, बाबा का बना, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो एग्रीमेंट साइन करता हूं, तो बाबा के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया कि बाबा आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा और मेरा जो छोटा मोटा काम हो वो आप कर लेना। ये बाबा के साथ भी एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो बाबा जो कहता है मुरली के द्वारा, निमित के द्वारा, वो मुझे करना है, बाबा की याद में रहना है और बाकी बाबा अपना सारा काम कर लेता है। एक नहीं, ऐसे अनेक एग्जाम्पल इस लाइफ में है। परिवार में विरोध तो था ही, मेरे से छोटी बहन की शादी पिताजी ने करवा दी, उससे छोटी बहन की शादी के लिए लड़का देख रहे थे तो कहीं सेट नहीं हो रहा था। एक बार घर पे गया, पिताजी ने गुस्सा किया कि तू ब्रह्मा कुमारी में जाता है ना इसलिए तेरी बहन से कोई शादी नहीं करता, अब इसके लिए लड़का ढूंढना और इसके शादी का खर्चा सारा तेरे ऊपर है, एक की मैंने करा दी दूसरा तेरे ऊपर। मैंने कहा ठीक है। मैं बाबा के कमरे में गया, बाबा वो पिताजी ने ये सौंपा है काम, बहन के लिए लड़का भी ढूंढना है, शादी का खर्चा भी है, आप देख लो जैसे भी कराना हो। उन्हीं दिनों में मुझे दीदी ने बताया कि मधुवन से पत्र आया है अकाउंट डिपार्टमेंट में, आपको 15 दिन सेवा के लिए बुलाया है, आप जाओगे। मैंने कहा जरूर जाऊंगा। मैं ऑफिस में गया, एप्लीकेशन लिखी 15 दिन की छुट्टी की और बॉस के पास गया कि मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए, मना कर दिया नहीं मिलेगा। मैंने कहा मेरे लॉटरी है मेरे जीवन की, मधुवन में अकाउंट में सेवा मेरी लॉटरी है, मुझे जाना ही है। बोले नहीं मिलेगी। मैंने रेजिग्नेशन लिखा, ले भाई तेरी नौकरी नहीं करनी मुझे नौकरी। बोले नौकरी छोड़ रहे हो तुम? मैंने कहा हाँ। बोले नहीं मिलेगी। मैंने कहा मिल जाएगी नौकरी, चिंता नहीं करो, तुम इस्तीफा मंजूर करो। इस्तीफा देके मैं आ गया मधुबन, 15-20 दिन सेवा की, वापिस गया तो नौकरी तो थी नहीं हाथ में, किराए के कमरे में किराया देना, अपना खर्चा, बहन की शादी का खर्चा, सब कुछ, और बैंक बैलेंस तो मेरा जीरो ही रहता था सदा, तो कुछ था ही नहीं। फिर मैंने दीदी को पूछा, मैंने कहा दीदी अभी मेरे पास तीन ऑप्शन है, या तो मैं अहमदाबाद में दूसरी नौकरी ज्वाइन करूं, या विदेश में कहीं नौकरी का ट्राई करूं, या अपना खुद का सीए का ऑफिस करूं। आप जैसे कहेंगे मैं कर लूंगा। दीदी ने कहा अपना खुद का सीए का ऑफिस कर लो। मैंने कहा ठीक है दीदी। अब मैं मन में सोचने लगा खुद का ऑफिस करने के लिए कोई ऑफिस किराया लेना, उसकी डिपॉजिट देना, फर्नीचर बनाना, फिर कोई क्लाइंट भी तो हो, ऑडिट किसकी करूंगा, नया नया था मैं तो अहमदाबाद में। पर दीदी ने बोला, मतलब बाबा ने बोला, मैंने कहा ठीक है दीदी। तो मैं जिस कमरे में किराए पर रहता था, विजिटिंग कार्ड पर उसी एड्रेस में विजिटिंग कार्ड छपा के अपने फ्रेंड्स में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, भाई मैंने सीए का ऑफिस शुरू किया है, कुछ काम हो तो बताना। अब देखो हजार हाथ वाला भक्ति में महिमा करते थे, लेकिन इस ज्ञान मार्ग में उसका अनुभव करने का समय है। तो मैंने कहा तो 20 दिन में मुझे इतना काम मिला जो मेरे पूरे साल की सैलरी के बराबर होता था, उतना काम केवल 20 दिन में ही मिल गया। मैंने कहा वाह बाबा वाह, कमाल है आपकी। फिर 10 दिन और निकले और अहमदाबाद का एक सीनियर सीए मेरे से मिलने आया कि ललित भाई आप मेरी ऑफिस आना 11 बजे। मैं 11 बजे ऑफिस गया, बोले देखो मेरी उम्र हो गई है, मेरा काम बहुत बढ़ रहा है, इतना आप पार्टनर बन जाओ तो मैं आपको इतना परसेंट शेयर दूंगा। अब पार्टनर, पुरानी फर्म में पार्टनर बनने के लिए कैपिटल का पैसा देना पड़ता है, तब वो पार्टनर बनाते। मैंने कहा भाई साहब मेरे पास तो कोई पैसे है नहीं आपको देने के लिए, मैं कैसे पार्टनर बन सकता हूँ। बोले नहीं नहीं आप सीए हो ना, आप बैठो ये ऑडिट शुरू करो और आपको इसी महीने से इतना पैसा दूंगा। मैंने कहा मैं आपको शाम को बताता हूँ। मैं फिर दीदी के पास गया, दीदी ये ऐसा ऑफर है क्या करूं। तो दीदी ने कहा पार्टनरशिप ज्वाइन कर लो। मैंने पार्टनरशिप ज्वाइन की। अब कमाल देखो, जिस महीने में मैंने पार्टनरशिप ज्वाइन की उसी महीने में वहां एक नई इनकम का सोर्स शुरू हुआ, और मेरा जो शेयर था वो भी एक बड़ी रकम मुझे हर महीने मिलने लगी। 8-9 महीने में बहन की शादी के लिए जितना पैसा चाहिए इकट्ठा हो गया। मैं 5 साल नौकरी करता तो वो पैसा इकट्ठा नहीं होता, जो बाबा ने नौकरी छुड़ा के 8-9 महीने में ही वो पैसा सारा इकट्ठा करवा दिया। फिर एक बहुत अच्छा परिवार मिल गया, बहुत अच्छा लड़का मिल गया, अच्छी तरह से शादी हुई, बहुत धूमधाम से शादी हुई। पप्पा सोचे हमारे पिताजी कि इसके पास तो पैसा तो था नहीं, नौकरी भी इसकी छोड़ गई, इसके पास इतना पैसा कहां से आया, क्योंकि हजार हाथ वाला उनको तो नहीं दिखाई देता है और हमारे तो साथ है, तो हम तो अनुभव करते हैं उसका हर समय कि कैसे हजार हाथ वाला मदद कर रहा है। तो बहुत अच्छी तरह शादी हो गई। जब शादी हुई सब बैठे थे तो लड़की के पिताजी ने हमारे पिताजी से पूछा, लड़के के पिताजी ने हमारे पिताजी से पूछा कि आपको पता है अपना कोई परिचय नहीं है पहले का, फिर भी हम आपकी लड़की को लेके जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं आपको पता है। तो पिताजी ने कहा बताइए क्यों ले जा रहे हैं। तो कि जब पहली बार आप और ललित जी हमारे घर लड़का देखने आए थे तो जो ललित जी का परिचय मुझे पता चला तो मुझे लगा कि जिस घर में ऐसा धार्मिक गुणवान भाई है उसकी बहन कितनी अच्छी होगी जो हमारे घर को संभालेगी, इसलिए हम आपकी लड़की को ले जा रहे हैं। पिताजी ने मुझे क्या ताना दिया था कि तुम ब्रह्मा कुमारी में जाते हो इसलिए तुम्हारी बहन से कोई शादी नहीं करता, और बाबा ने उनको उत्तर क्या दिलाया कि ये ब्रह्मा कुमारी में जाता है इसलिए आपकी लड़की को हम ले जा रहे हैं। ये भगवान के काम करने का तरीका है। तो हम उस पे बस विश्वास रखें और करें तो वो 100% मदद करता ही है। मैं जिस कमरे में किराए पर रहता था वो बाबा के एक बच्चे का ही था, बाबा के पुराने बच्चे थे, तो नीचे वो रहते थे और ऊपर उनकी बहन का पार्ट था, वो गांव में रहते थे तो मुझे किराए पर दिया हुआ था। तो मुझे कहा ललित भाई वो बहन जो है वो 15 दिन बाद उनका पोता जो है कॉलेज में एडमिशन हुआ है वो सामान लेके आएगा तो आपको कमरा चेंज करना है। मैंने कहा ठीक है। मैं बाबा के पास गया, बाबा के रूम में, और बाबा को बोला बाबा कमरा चेंज करना है आप देख लेना। बाबा का फोटो है और बात कर रहे हैं ऐसा नहीं, बाबा बैठा हुआ है और घर में पिताजी से कैसे बात करते हैं ऐसे बात करते हैं बाबा से कि बाबा ये सेवा है आप देख लेना ये काम है सब। मैं कोई कमरा देखने नहीं गया वो 12-15 दिन में, उन्होंने एक दो कमरा बताया वो मकान मालिक ने लेकिन पसंद नहीं आया। 13 दिन पूरे हो गए थे, 14वां दिन था, मैं मुरली क्लास करके नीचे उतरा बहन जी ने पूछा, ललित भाई आपको कमरा चेंज करना है? मैंने कहा जी बहन जी। कब चेंज करना है? मैंने कहा आज करना है। कहीं देखा है? मैंने कहा नहीं देखा है। वो हंसने लगे कि कमरा चेंज करना है, आज ही करना है, देखा भी नहीं है और चिंता भी नहीं है, निश्चिंत खड़ा है अभी। कमरा कोई 1000 रुपया जेब में लेके गए और लेके आ गए, ऐसा तो नहीं होता है, देखना पड़ता है तब होता है। वो हंसते हंसते अंदर गए, एक की चेन में चाबियां लेके आए, 8-10 चाबियां थी, लाके मेरे हाथ पे रखा। बोले ये वो मकान है 3 मंजिला, 8-10 कमरे, किचन सब बना हुआ है, पूरा खाली पड़ा है, आप संभालो इसको। पूरा मुझे दे दिया। मुझे कितना चाहिए था? 1 कमरा चाहिए था। बाबा ने क्या दिया? पूरा बंगला ही दे दिया 8-10 कमरों का। लेकिन कब दिया? लास्ट दिन। कब दिया? लास्ट दिन। तब तक क्या था? मेरे निश्चय की परीक्षा थी कि मैं अंदर से कितना हलचल में आता हूं, लेकिन मैं भी मजबूत। मैंने कहा छोड़ दिया, तेरे को जो करना है करा, तेरे हवाले। फिर क्या है, जब तेरे भगवान के हवाले है तो मुझे सोचना क्या। हाँ, मैं ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट कर रहा था, लेकिन मैं भगवान को याद कर रहा था, उसका काम मैं कर रहा था, मेरा उसको करना है। तो लास्ट दिन में, तो जब हम विश्वास रखते हैं तो हमारी विजय निश्चित है। मैं 2 मिनट और लूंगा, टाइम हो गया है। लेकिन एक गांव में एक संत कथा कर रहे थे, कथा में उन्होंने बहुत महिमा की भगवान की, कि भगवान आपको सब प्रकार से मदद करेगा, नदी में रास्ता दे देगा, ये देगा, प्रहलाद को बचा दिया, ये कर लिया, बस आप भगवान पे विश्वास रखो, भगवान मदद करेगा सब। शाम को वो नदी पर नहाने जा रहे थे तो देखा दूर एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो नजदीक गए, देखा ये क्या कर रहा है। नीचे एक तलवार ऐसी खड़ी थी और वो व्यक्ति पेड़ पर चढ़ रहा उतर रहा है। उसको कहा भाई ये तुम क्या कर रहे हो? तो कहा प्रभु महाराज आपने ही तो आज कथा में कहा था। तो कि क्या कहा था? आपने कहा था कि नीचे तलवार भी खड़ी हो, आप पेड़ से नीचे गिरोगे तो भी भगवान बचा लेगा, भगवान मदद करता है, आपने तो कितना समझाया था आज। तो उसको महाराज को याद आया, बोले हाँ मैंने कहा तो था। तो बोले मैं यही प्रयोग कर रहा हूं। अच्छा आप प्रयोग कर रहे हो, तो आप पेड़ पर चढ़ते हो तो तलवार पे क्यों नहीं गिरते, उतरते क्यों हो वापिस? तो उसने कहा मैं चढ़ता हूं तलवार पर गिरने के लिए ही चढ़ता हूं, पर ऊपर से जब तलवार देखता हूं ना तो मुझे विचार चलता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा। महाराज ने कहा वो नहीं आएगा, जहां संशय है वहां वो नहीं है, लेकिन जहां निश्चय है वहां वो हाजरा हजूर है। लेकिन बस यही बात है कि अगर हम बाबा को हमने पहचान लिया है तब तो यहां बैठे हैं पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल में भट्टी कर रहे हैं। तो जब उसको पहचान लिया तो उसमें विश्वास रखे ना। सारी दुनिया का काम करने वाले को हमारे छोटा मोटा काम करने में क्या प्रॉब्लम है? किसी को भी निमित्त बना के करा लेगा। तो इस 34 साल के जीवन में इतने बाबा ने अनुभव कराए हर प्रकार के। ये तो मैंने आपको 2-3 सैंपल सुनाए, हर प्रकार के गवर्नमेंट ऑफिस से लेके इतने अनुभव कराए, कमाल कर दिया, मतलब कमाल कर दिया बाबा ने। तो हमारी भी यही शुभ भावना शुभकामना है कि आप सभी नूरे रतन बाबा के सिकिल दे। बस बाबा की एक शर्त याद करना उसको, बस बाकी सारा उसके हवाले कर दो, सारा बाबा सहज कर देगा और सब कुछ करा लेगा। ओम शांति। जब भी निकलता घर से
तुम साथ चलते हो, धूप भरी राहों में बादल से ढलते हो। जब भी निकलता घर से तुम साथ चलते हो, धूप भरी राहों में बादल से ढलते हो। यात्रा सुखद ही होगी, यात्रा सुखद ही होगी, विश्वास रहता है भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। खुशियाँ लुटाता हूँ तेरा नाम रूप गुण में सबको बताता हूँ। तुमने मुझे जो दी वो खुशियाँ लुटाता हूँ तेरा नाम रूप गुण में सबको बताता हूँ। रोशन हो सबके दिल ये, रोशन हो सबके दिल ये आभास रहता है भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। हर एक मेरे है ये दिल गीत गाता है, सब प्रेम से रहे ये सरगम सुनाता है। हर एक मेरे है ये दिल गीत गाता है, सब प्रेम से रहे ये सरगम सुनाता है। जन्नत बने जहाँ ये, जन्नत बने जहाँ ये शुभ भाव रहता है भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। हर वक्त मेरे साथ हो विश्वास रहता है भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है, भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। आप दो हाथ की ताली से भाई जी का अभिवादन करेंगे। और जो अभी गीत बज रहा था वो भाई जी का स्वरचित गीत था। और हरेक की बाबा के साथ अपनी अपनी भागवत होती है, किसी की छोटी किसी की बड़ी। तो आज भाई जी ने सभी को लाइव कर दिया। हरेक को अपनी भागवत याद आ गई, आई? मुझे तो बहुत आई, क्योंकि भाई जी के साथ साथ ही मैं ज्ञान में आई हूँ वैसे। और देखूँ तो मेरे जीवन में भी बहुत सारी बातें ऐसी थी जिसको हम क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे। तो भाई जी पहले तो मैं ही आपको बहुत बहुत थैंक्स कहूँगी कि आपने एक फिर से नशा चढ़ा दिया। जैसे बचपन होता है ना हमारा, तो हम बचपन में चले जाते हैं, बचपन के दिन भुला न देना, है ना। तो आज भाई जी ने सबको अपना अपना बचपन याद दिला दिया। बहुत बहुत थैंक्स भाई जी।